श्लोक संख्या 34 अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य संभावितस्य चाकीर्तम् मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। अगला श्लोक। भयाद्रणादु परंतम मन्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बढ़िया। तात्पर्य ट्रांसलेशन और तात्पर्य दोनों।
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है ये सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम्हें अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। इन्हें तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इस श्लोक में भगवान अकीर्ति भगवान कहते हैं, लोग सदैव तुम्हारे वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश या अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इस प्रकार का वर्णन लोग करेंगे इस विषय में भगवान इस श्लोक में कहते हैं। हमने देखा 33वें श्लोक तक भगवान ने तीन प्रकार के दोषों का वर्णन किया है। कितने दोषों का वर्णन किया है? तीन प्रकार के दोषों का वर्णन किया है। तीन दोष कौन से? पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने तीन दोष का वर्णन किया है। कौन से तीन दोष है? स्वधर्म चला जाएगा, स्वधर्म जाएगा, फिर कीर्ति जाएगी और फिर होगा क्या, पाप मिल जाएगा। इन तीन दोषों के ऊपर 33वें श्लोक में भगवान ने चर्चा की है, बताया है अर्जुन को इस दोष से दूर रहो, यह दोष यह पाप यदि हो जाएगा तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस श्लोक में चौथा दोष कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में कीर्ति चली जाएगी कहा है, अर्जुन की कीर्ति जाएगी, लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं, इस श्लोक में क्या कहते हैं लोग, सदैव तुम्हारे अपकीर्ति का वर्णन करते रहेंगे। आप बताइए, किसी व्यक्ति का नाम खराब होता है, कीर्ति चली जाती है तो वहां तक ठीक बात है, पर भगवान कह रहे हैं ये जो आपकी कीर्ति चली जाएगी, कीर्ति जाने का वर्णन सारा संसार करता रहेगा। वही बोलते रहेंगे, जो अपकीर्ति है उसी का सारा संसार चर्चा करता रहेगा। तो ये तो बड़ी भयानक बात है। तो इस श्लोक में चर्चा का विषय टोटली बदल रहा है। पूर्णतः यहां जो भगवान अर्जुन के साथ चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को जो बोल रहे हैं, यहां पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर ही चेंज हो गया है, विषय ही लगभग बदल गया है। कैसे बदल गया है? आपको याद है दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान को समर्पित हो गए, कार्पण्य दोषो प्रहुत स्वभाव पृच्छा मित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, शिष्यस्ते सरेंडर हो गए भगवान को। अर्जुन ने कहा हे भगवान मेरा शिष्य के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, मतलब समर्पित हो गए भगवान को। भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया, कैसे पता चलता है? क्योंकि भगवान ने तुरंत उपदेश देना शुरू किया। गुरु क्या करते हैं, उपदेश देते हैं ना। जब शिष्य का स्वीकार करते हैं शिष्य का, तो कुछ उसको उपदेश देते हैं शिष्य को, कहते हैं कि आपका आगे का जीवन भक्तिमय जाए, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़े, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए उपदेश देते हैं। तो भगवान ने तुरंत बाद से इसी श्लोक में इसी अध्याय में उपदेश देना शुरू किए। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम भगवान ने कौन सा विषय की चर्चा की इस अध्याय में, जो भगवान बोलना शुरू किए, किस बात की चर्चा की? आत्मा। भगवान ने सर्वप्रथम आत्मज्ञान अर्जुन को दिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा मरता नहीं है, नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक नक्लेद। सब भगवान ने आत्मज्ञान, सर्वोच्च जो ज्ञान है, आत्मज्ञान अर्जुन को देने का प्रयास किया। सर्वोच्च ज्ञान है वो। परंतु कुछ श्लोक के पश्चात क्या हुआ, कुछ श्लोक के पश्चात भगवान समझ गए। दो तीन श्लोक पहले हम देख रहे हैं भगवान ने क्या कहा, भगवान उनको बताना शुरू किए क्या, कर्तव्य कर्म पहले भगवान ने आत्मज्ञान बताया, सबसे ऊंचा ज्ञान बताया। कई श्लोक उसमें गए, आप हमारी चर्चा हुई, तीसरावे श्लोक तक क्या हुआ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, 2.11 से 2.30 तक, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। फिर उसके पश्चात 31 से आगे कर्तव्य कर्म, क्या करना चाहिए, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या है और क्यों करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्या कर्तव्य, कौन से कर्तव्य है, स्वधर्म, स्वधर्म क्या, स्वधर्म है, इसकी चर्चा भगवान ने विस्तार से की है। तो उसमें एकदम ऊंचा स्तर जो है दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान, उसके ऊंचे स्तर से भगवान एक कदम नीचे आ गए, कर्तव्य कर्म, कर्म का ज्ञान बता रहे हैं, कर्तव्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं, मतलब आत्मज्ञान ऊपर के सीढ़ी से और नीचे आए। अब इस श्लोक में और विषय बदल रहा है, बहुत अच्छी तरह से भी भगवान ने विषय को बदल दिया है। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी और उस कीर्ति का, तुम्हारे अपयश का ही गुणगान गाएंगे, वर्णन करेंगे लोग। अब ये तो एकदम भौतिक स्तर की बात है, हाँ भाई आश्चर्य है कि नहीं, नाम खराब हो जाएगा भैया आपका इतना नाम कमाया खराब हो जाएगा, कितने भौतिक स्तर की बात, एकदम निचला स्तर है। तो भगवान ने शुरुआत की आत्मज्ञान से, फिर आ गए हैं कर्तव्य कर्म पे, और कर्तव्य कर्म से एकदम निचला स्तर जिसको हम कहते हैं भौतिक सांसारिक बातें, भगवान वहां से सीधे नीचे जंप मार दिए है कि नहीं, ऐसा क्यों किए होगे भाई भगवान, ऐसा क्यों, हमने आज तक ये सुना, क्या सुना, भौतिक स्तर का पहले इस सांसारिक जगत का थोड़ा बहुत चर्चा किया जाता है, ये ज्ञान दिया जाता है, फिर थोड़ा ऊपर का ज्ञान, भाई अभी आपके कर्तव्य समझिए क्या है, और कर्तव्य समझने के बाद फिर बताया जाता है कि दिव्य ज्ञान आत्म ज्ञान क्या है। ये हमारे लिए प्रोसीजर है कि नहीं, हमने देखा है जनरल नॉर्मल कोर्स, परंतु भगवान ने क्या किया है, आत्मज्ञान पहले दिया, उस उनके ध्यान में आया आत्मज्ञान काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कर्तव्य कर्म की चर्चा की। अब कर्तव्य कर्म में भी उनको कुछ संशय हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, भौतिक स्तर की बातें करना शुरू कर दिए, आपका नाम खराब हो जाएगा, कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगी, सारा संसार आपके अपकीर्ति का ही वर्णन करेगा, बताओ ऐसी बातें किसके साथ की जाती है जिसको अपनी कीर्ति का या अपना नाम का बड़ा गर्व होता है, मतलब पूरी तरह से भौतिक स्तर की सांसारिक बात। इसका अर्थ तो पहले यह है कि अर्जुन वास्तव में ओरिजिनली भ्रमित नहीं थे, वॉल्यूम कम कीजिए, अर्जुन वास्तविकतः भ्रमित नहीं थे, जब वो युद्ध करने के लिए तैयार थे उस समय उनको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था, वो तो तैयार हो गए थे बांध लेंगे, देखिए वो पूरी तरह से ज्ञानी व्यक्ति है, परंतु वहां जाने के बाद मतलब परिस्थिति आने पर वो विचलित हो गए, तो एक शिक्षक जो सच्चा शिक्षक होता है, एकदम सच्चा शिक्षक, रियल टीचर, वो अपने स्टूडेंट का अपने विद्यार्थी का भाव बहुत अच्छा समझ लेता है, वो अपने विद्यार्थी को अपने स्टूडेंट को उसकी मानसिकता उसकी बौद्धिक क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता पूरी तरह से अपने शिष्य को समझता है, उसकी जो रिएक्शन है, अपने शिष्य की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को सच्चा शिक्षक बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। भगवान कृष्ण ये बहुत ही सच्चे उपदेशक गुरु है, परम गुरु है, शुद्ध गुरु है, और विशेषकर भगवान है, परमात्मा है। परंतु गुरु के भी रूप में वो अपने शिष्य अर्जुन की प्रत्येक प्रतिक्रिया को समझ रहे हैं। जब उन्होंने आत्मज्ञान की चर्चा की तो अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया दी? अर्जुन ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर से वो समझ गए कि यह कर्तव्य कर्म में उलझ गया है, आत्मज्ञान की स्तर से नीचे आया है। अब मैं इसको कर्तव्य कर्म की बात बताऊं, इसलिए भगवान ने कर्तव्य कर्म की बात बताई। भगवान कहे, तुम कह रहे हो ये युद्ध मैं यदि करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, परंतु शास्त्र कहता है कि तुम यदि ये युद्ध करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। कर्तव्य कर्म की व्याख्या बता दी भगवान ने। उसके पश्चात भी इतना बताने के बाद भी उनको लग रहा है कि अर्जुन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर उसके मन में कुछ संकोच है और कुछ रिएक्शन, कुछ बोल रहा है, और जो कुछ भी वो बोल रहा है उसका स्तर भौतिक है। भौतिक सांसारिक बातों की चर्चा अर्जुन अब कर रहे हैं। जब अर्जुन ही भौतिक और सांसारिक बात करेंगे, प्रश्न इस प्रकार से मन में रखेंगे भौतिक स्तर का, तो भगवान भी भौतिक स्तर पर उत्तर देंगे, तो भगवान भी भौतिक स्तर पर उनको उत्तर दे रहे हैं। वो भगवान समझ रहे कि यदि अर्जुन इतना ज्यादा भौतिक स्तर पर सोच रहा है तो यदि मैं इसको ये कहूं कि भाई तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, इतना तुम्हारा नाम है तीनों लोगों में, स्वर्ग में भी, वो पूरा नाम खराब हो जाएगा, यदि इस बात को अर्जुन को कहा जाए तो अर्जुन गंभीर हो सकता है, सीरियस हो सकता है, हाँ मेरा नाम खराब होगा। देखिए नहीं, किसी व्यक्ति का नाम खराब होना होता है तो वो पहले कितना चिंतित होता है नाम खराब होने के चक्कर में। तो अर्जुन, भगवान भी यही सोच रहे हैं कि नाम खराब होगा तो अर्जुन गंभीरता से कुछ सोचने लगेगा। कीर्तिवान, इसलिए इस श्लोक में तात्पर्य कहा है, कीर्तिवान व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, ऐसा कह रहे हैं। इफ कोई कहावत है, कोई वेस्टर्न फिलोसोफर शायद शेक्सपियर ने कहा है, किसी ने कहा है, इफ आई लूज माई पर्स आई लूज ट्रैश, कहते हैं इफ आई लूज माई पर्स आई लूज ट्रैश, मैं यदि अपना पर्स यानी अपना धन गमा देता हूं तो कोई बात नहीं, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ट्रैश, मतलब डस्टबिन है मेरे लिए। धन यदि मैं मेरा चला जाता है तो कोई बात नहीं, वो हमारा कूड़ा कचरा जाने के बराबरी में, डजंट मैटर। परंतु यदि चरित्र जाता है, परंतु यदि अपकीर्ति मिलती है तो वो मृत्यु से भी भयंकर वेदना देती है। विशेषकर जिसका नाम है, यह हम समझते हैं कि कोई नामी व्यक्ति है, कोई बहुत नाम कमा लिया है और उसका किसी भी कारण से अधपतन हो गया, किसी भी कारण से अपकीर्ति हो गई तो बहुत ही भयंकर डिस्ट्रेस में चला जाता है। परंतु जीवन का नियम है, क्या है जीवन का नियम? एवरी राइज हैज अ फॉल, हर चढ़ान को ढलान है और हर ढलान के बाद चढ़ान है, हर चढ़ान के बाद ढलान है, ढलना ही पड़ेगा, जीवन का नियम है। कितना भी नाम हो जाए लेकिन कभी ना कभी वो ढलान पे आ जाएगा, चढ़ान है तो ढलान है, ढलान है तो चढ़ान है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रथम पंक्ति में बताया गया है कि भगवान यहां पर जो अर्जुन की अपकीर्ति कह रहे उसको कह रहे अव्ययाम, क्या कहते हैं? अव्ययाम। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यय अव्ययया, यह जो हमारा चढ़ान और ढलान है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, जब हम ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर टॉप पे पोजीशन, टॉप के पोजीशन पे रहते हैं, एकदम बहुत ऊंचा नाम कमाया होता है, उस समय जब हम होते हैं तो बड़े प्रेम से आनंद से रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब ढलान आती है, वो ढलान के बारे में हम सोचते नहीं है कि राइज के बाद फॉल आएगा, इस बात की हमको चिंता नहीं रहती है। इसलिए फॉल जब आता है, जब हमारी ढलान शुरू हो जाती है, तो उस ढलान का प्रतिकार करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जब चढ़ान थी, जब हम ऊपर की स्थिति में थे, राइजिंग पोजीशन में थे, उस समय कोई प्रिपरेशन नहीं की है कि भाई हम ऊपर पहुंच गए हैं, पहाड़ी के टॉप शिखर पे पहुंच गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं, यदि गिर गए तो हमारे पास सुरक्षा क्या है, या गिर गए तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसका कोई ट्रेनिंग लिया है क्या? मान लो गिर रहे, फॉलिंग डाउन। अब गिरने के पोजीशन में हमने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है क्या? क्यों नहीं किया? क्यों इसलिए नहीं किया? क्योंकि हम भ्रमित थे। जब हम ऊपर पोजीशन में थे, राइजिंग पोजीशन में थे, तब बहुत बड़ा भ्रम था हमें। क्या भ्रम था? हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? हम सबसे बड़े हैं, हमको सब पता है। किसी को बोलने के जाओ प्रभु जी भगवत गीता, सब पता है। हमारे बचपन से हमारे दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी, वहां से लेके तो हमारे पिताजी और हम तक, सबको भगवत गीता पता है, सब पता है। मतलब ट्रेनिंग लेने की सोच है नहीं, क्योंकि राइजिंग पोजीशन में है, चढ़ान में है। और जब ढलान आ जाती है तो फुटबॉल के साथ एकदम नीचे गिर जाते हैं। और वह नीचे गिरना, उस समय जो पोजीशन, जो परिस्थिति आती है, बड़ी कठिन परिस्थिति आती है। और उस समय जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो टेंशन आता है, वह टेंशन की वजह से व्यक्ति का पूरे जीवन भर रहता है। फिर क्योंकि पता ही नहीं है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो टेंशन है, इसे बाहर कैसे निकाला जाए अपने आप को, इसका ट्रेनिंग नहीं लिया जब राइजिंग पोजीशन थी। अब बड़ी कठिन परिस्थिति हो रही है, अब मन स्थिर ही नहीं होता है, अस्थिरता, चंचलता, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये सब उसी के कारण आता है, क्योंकि हम हमारे जीवन का स्वभाव नहीं जानते। जीवन में उतार और चढ़ाव आना ही है, फिक्स है, 100% गारंटी। लेकिन क्योंकि हम तैयार नहीं करते हैं अपने मन को, अपने आप को, इसलिए सारे दुखों को हम झेलते रहते हैं। अर्जुन यही सिखा रहे हैं हमको। अर्जुन इतने ऊंचे पोजीशन में है, भगवान बता रहे हैं आप कितने ऊंचे पोजीशन पे हो, आपकी कीर्ति खत्म हो गई, कितना नाम है आपका अर्जुन। अरे जब आप स्वर्ग में पहुंच गए थे, इंद्र के पास जब आप पहुंच गए थे, इंद्र ने आपको बुला लिया, स्पेशल रथ दे दिया आपको, ऊपर बुला लिया, और आप वहां गए, और वहां जाने के बाद सारी देवी देवताओं को तो दूसरे आसन मिल गए, लेकिन इंद्र ने आपको अपने बाजू में बैठा लिया, सिंहासन, एक ही सिंहासन पे दो बैठ गए, यहां इंद्र और यहां बाजू में अर्जुन, इतना कीर्ति है आपका। तो अपकीर्ति आपका जब हो जाएगा, तो ये ना समझिए कि केवल ये भौतिक संसार में, इस पृथ्वी पे ही आपका अपकीर्ति हो जाएगा, तीनों लोगों में आपका अपकीर्ति हो जाएगा, सारे देवी देवता आपसे सोच में पड़ जाएंगे कैसा होगा। तो इसलिए इस बात को यहां भगवान यही कह रहे हैं कि अव्ययाम, अव्ययाम मतलब कभी किसी की अपकीर्ति हो जाती है, मान लो हो गई, तो अपकीर्ति होने के पश्चात क्या होता है, कुछ समय जाता है, साल, डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, चार साल, ज्यादा से ज्यादा, और तीन चार साल होने के पश्चात क्या होता है, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर से व्यक्ति अपना नाम प्राप्त कर सकता है। पर भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथायिष्यन्ति अव्ययम्। अव्ययम् मतलब वो सदा लोग वर्णन करते रहेंगे आपका। ऐसा नहीं कि साल दो साल इस बात का वर्णन करके शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप युद्ध नहीं करोगे और अपकीर्ति को प्राप्त करोगे तो सारे संसार के तीनों जगत के लोग अव्यय अनंत काल के लिए नित्य आपकी इस अपकीर्ति का वर्णन करते हैं। एक दो चार दिन के लिए नहीं, नित्य के लिए, हमेशा के लिए। आप बताओ आप क्या सोचते हैं? हमारे संसारी जगत में हमने कई बार देखा है कि थोड़ा अपकीर्ति हो जाता है, नाम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई अपयश आ जाता है, दो चार साल लोग कुछ कुछ बोलते हैं बाद में भूल जाते हैं। हरे कृष्ण भक्तों के बारे में विशेष कर होता है। हरे कृष्ण भक्त, हरे कृष्ण भक्तों के बारे में प्रभुपाद जी ने जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये आंदोलन चलाया, पाश्चिमात्य देशों में सबसे पहले प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए, बहुत नाम खराब किया, बहुत नाम खराब इन लोगों ने, पाश्चिमात्य देशों के लोगों ने नाम खराब किया। पहला क्या बोले, सबसे पहले बोले कि ये लोग अपने पुस्तक वितरित करके, मतलब अपने पुस्तक तो वितरित करते लेकिन बड़े आग्रह से वितरित करते, बहुत आग्रह करते हैं हमको ये पुस्तक लेने के लिए, है कि नहीं? अभी हम कर रहे कि नहीं? तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बोल रहे थे कि ये लोग जबरदस्ती उनके ग्रंथ हमको देते हैं। पहला आरोप, तब नाम खराब कर रहे थे इस प्रकार से। फिर कहे ये भारतीय लोग जो आए हरे कृष्ण आंदोलन छेड़ रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये नए लोग जो कुछ जानते नहीं उनके मस्तिष्क की धुलाई करते हैं, उनके दिमाग की इतनी धुलाई करते हैं, इतनी धुलाई करते हैं कि वो बदल जाते हैं, बहुत धुलाई करती है उनके ब्रेन की। फिर वो कहते हैं ये लोग ऊंचे स्वर में पूरे रस्ते पे पूरे रोड पे कीर्तन करके दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसे आरोप लगाए हैं प्रभुपाद जी के ऊपर। और फिर क्या कहे कि ये लोग मांसाहार, व्यभिचार, नशा और सट्टा, जुगार, इन सब बातों के ऊपर बंदी लाके हमारा शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ा रहे हैं। इन बातों के ऊपर बंदी, ये लोग कहते कि ये मत करो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, सट्टा मत करो, जुगार मत खेलो, ऐसा बोलते हैं ये लोग। और जब ऐसा बोलने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ये हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने का काम कर रहे हैं। इतने प्रकार के आरोप अपकीर्ति हरे कृष्ण मिशन पे उस समय लोगों ने, वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में 1% भी विचलित नहीं, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, टेंशन कुछ नहीं हुआ उनको। उन्होंने सोचा, वो कहने लगे कि विरोधी लोग जितना अधिक विरोध करेंगे हमारे इस मिशन का, जितना ज्यादा विरोध करेंगे उतना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, विस्तार होगा और प्रचार होगा, है कि नहीं? जितना विरोध करेंगे उतना ज्यादा इस हरे कृष्ण मिशन का प्रचार प्रसार उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना तेजी से होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों बोले होंगे प्रभुपाद जी? और कुछ थोड़ा सा तर्क कीजिए।
वन सेंटेंस में उत्तर दीजिए, वन सेंटेंस में उत्तर, एक वाक्य में। है कोई तर्क? क्योंकि जब वो विरोध भी करेंगे तो विरोध करते वक्त हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे कृष्ण ये नाम उनको बोलना पड़ेगा, ये हरे कृष्ण वाले ऐसे हैं, ये हरे कृष्ण वाले वैसे हैं। तो ये हरे कृष्ण जब वो नाम उच्चारण करेगा तो एक बार भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो क्या हो जाता है, अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि वो हरे कृष्ण भले ही वैफल्य ग्रस्त यानी कोई कंफ्यूजन से या कोई भ्रमित होने से भी यदि वो हरे कृष्ण बोलते भी है तो भी प्रचार बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे अजामिल की कथा है भागवतम में, उन्होंने नाम ले लिया। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं कोई हराम भी बोलता है तो भी उसको सुकृति मिलती है, उसमें राम है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह प्रवचन, हराम भी बोलने से कोई द्वेष भाव से कहते कि हराम, इस शब्द का उच्चारण करते द्वेष भाव से तो भी, क्योंकि उसमें राम आ गया तो थोड़ी बहुत सुकृति उसको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उपहास से भी यदि कोई हरे कृष्ण का नाम लेता है तो भी वह लाभान्वित हो जाता है। जिस प्रकार अपकीर्ति के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन की कीर्ति, अपकीर्ति के द्वारा है कि नहीं, अपकीर्ति के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन की कीर्ति बढ़ गई, उस प्रकार अर्जुन का होने वाला नहीं है। भगवान बोल रहे हैं वैसे नहीं होगा, तुम्हारा थोड़े देर अपकीर्ति होगी और फिर कीर्ति होगी, ऐसा तुम्हारा होने वाला नहीं है। क्योंकि अव्ययम, वो अव्यय वाली अपकीर्ति है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। नित्य लोग, सारे संसार के लोग उसी का वर्णन करेंगे। आपकी कीर्ति भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं करेगा, जो अपकीर्ति है उसका ही चर्चा होगा। तो इस प्रकार से आगे की लाइन कहती है, संभावितश्च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण की भी अपकीर्ति हुई थी, आपको याद है कथा? भगवान कृष्ण की अपकीर्ति कब हुई थी? सामंतक मणि, जब सूर्यदेव ने इस सत्राजित नाम के यादव को, भगवान की एक कुल में के है, सत्राजित को जब सूर्य, वो सूर्य के बहुत बड़े पुजारी थे, सत्राजित सूर्यदेव की पूजा करते थे, प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने क्या कर दिया उनको, सामंतक मणि दिया। और सामंतक मणि उनको दिया, उन्होंने वो सामंतक मणि अपने भाई को दे दिया कि ठीक है मुझे तो मिल गया, आप कुछ समय आप अपने पास रखिए। प्रसन्नजीत को, सत्राजीत ने प्रसन्नजीत को सामंतक मणि दिया, प्रसन्नजीत ने अपने पास सामंतक मणि को रखा और बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे ऊंचे भाव से उसको परिधान करने लगे। एक दिन शिकार के लिए जंगल में चले गए और शिकार करते करते शेर सामने आ गया, शेर के साथ शिकार करते करते शेर ने उनको मार दिया। लेकिन कई दिनों तक उनका पता नहीं चला। बाद में सत्यजीत सत्राजीत सोचने लगे कि कहां हमारे भ्राताश्री गए हैं, उनको ढूंढने के लिए वो जंगल की ओर प्रस्थान किया। और जंगल में उन्होंने बहुत कुछ बहुत बहुत ढूंढा, उनको पता नहीं चला। तो जब उनको पता नहीं चला तो वो भगवान के ऊपर संशय करने लगे, कृष्ण के ऊपर। वे कहने लगे कि कृष्ण ने ही इस मणि को चुराया। किसने? कृष्ण ने इस मणि को चुराया है, इन्हीं के ऊपर हमको संशय है। इतना बड़ा भगवान कृष्ण का नाम, इतना कीर्ति, उस कीर्ति को ये अपकीर्ति हो गई ना, उनके नाम को खराब करने वाली बात है, चोरी की है। बोले वास्तव में वो है चोर। वास्तव में भगवान कृष्ण महाचोर है, चोरों के सरताज। लेकिन वो क्या चुराते हैं? हृदय चुराते हैं। उनका काम केवल हाथ चुराने का, हृदय चुराने का काम। तो इस प्रकार से उनके ऊपर जब आरोप लगा, क्योंकि इस समय भगवान कृष्ण राजा है और राजा के ऊपर यह आरोप कौन सा? चोरी का। राजा ही चोर है, यह आरोप। भगवान सोचे इसको तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान तुरंत जंगल में गए, पूरी तरह से रिसर्च सर्च किया। उनको पता चला, उन्होंने देखा कि एक इनका शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास प्रसन्नजीत का शरीर है, मृत शरीर, लेकिन उन्होंने देखा कि वहीं पे शेर के पैर का निशान है। उस निशानी की ओर चलते गए उन्होंने देखा थोड़ी देर पे तो ये शेर का भी शरीर, मृत शरीर पड़ा हुआ है। शेर भी मरा हुआ है, अब शेर भी मरा हुआ है, अब क्या करें? लेकिन उनको समझ में आया थोड़ी देर बाद, जब उन्होंने देखा तो वहां पे और पैर का निशान था। किसके? जामवन के पैर का निशान उन्होंने देखा। वो सोचे कि इसने ही इसको, शेर को मारा है। तो भगवान उस पैर के निशान को देखते 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 गए तो वो पूरी एकदम कहां पहुंच गए? बहुत बड़ी भयानक गुफा में। उस गुफा के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके सेवक बहुत से लोग थे। उन्होंने देखा ये तो महाभयंकर गुफा है, पूरी अंधेरी गुफा है, लेकिन मणि जो है वो अंदर ही है। ये मणि वही लेके गया है। कौन? जामवन। भगवान सोचे सोचे और फिर कहे चलो मैं अंदर जाता हूं। तो भगवान अंदर गए, उस गुफा को बंद कर दिया, बड़ा पत्थर। खुला यदि रखते तो क्या होता? खुला यदि रखते तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि खुला रखते तो उनको लगा किसी दूसरे रास्ते से वो चला जाएगा, तो गुफा बंद है। अब भगवान अंदर गए, कई दिन हो गए भगवान अंदर से बाहर ही नहीं आए। अंदर से डुशुम डुशुम आवाज आ रहा है, फाइटिंग का आवाज होता है ना, धड़ा कुछ गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, जैसा भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस प्रकार से डाम 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 आवाज। बाहर जो भगवान के साथ सैनिक आए थे वो सोच में पड़ गए, तो बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा भयानक गुफा है और इतने बड़े भयानक राक्षस अंदर हो सकते हैं। भगवान एक अकेले गए, कृष्ण अकेले ही अंदर गए। अब ये अकेले अंदर गए हैं, शायद इन्हीं को मार पड़ रही है। भगवान को बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही है कृष्ण को। अब ये वापिस नहीं आएंगे। 12 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते गुफा के बाहर, अभी तक कोई अंदाज नहीं। रोज धड़ा धड़ा भयंकर आवाज अंदर से आ रही है। आखिर 12वें दिन सारे सैनिक और जो भी भगवान के साथ आए थे वापिस चले। अंदर युद्ध चलता रहा, 28 दिन तक युद्ध हुआ और 28वें दिन जामवन को लगा कि इतना मेरे साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, इतना युद्ध केवल मेरे साथ मेरे भगवान ही कर सकते, जो मेरे एकदम मेरे लिए अति प्रिय है, ये मेरे भगवान राम ही हो सकते, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि भगवान राम में ही इतनी शक्ति है जो मेरे साथ इतने दिन तक युद्ध करके भी हारते नहीं है। ये तो मेरे साथ आनंद ले रहे हैं वीर रस का, वीर रस का ये मेरे साथ अनुभूति आनंद ले रहे हैं और ये तो मेरे स्वामी हैं, अब मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ गया है। जामवन उनको कहने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको अभी तक पहचान नहीं पाया, लेकिन आप मेरे ही प्रभु, आप भगवान राम। तब भगवान उनको प्रसन्न हुए और उनको भगवान को उन्होंने वो श्यामल तक बनी भेंट कर। उसके पश्चात भागवतम में बहुत बड़ी कथा है, भगवान कृष्ण उस मणि को लेके आए द्वारका में और सत्राजित को दिए, कहे कि देखो ये मणि, सभी सभा में भरी सभा में उनको कहे कि ये देखिए ये मणि, ये आपका मणि है, ये जामवन के पास था, कैसे पहुंच गया, आपके भाई के द्वारा वहां पर पहुंच गया। सभी के सामने जब वो मणि देखा, सत्राजित ने प्राप्त किया, सारे सभा में जितने भी राजे सब जो कोई भी आए थे भगवान का जय जयकार करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे और सत्राजित का हाय हाय करने लगे, हाय रे सत्राजित क्या तेरी मति, तो सत्राजित की अपकीर्ति होने लगी। हम समझ सकते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के अपकीर्ति में लगा है या भगवान के नाम के अपकीर्ति में लगा हुआ है उसकी अपकीर्ति 100% निश्चित है। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का अपमान करता है, भगवान की कीर्ति का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, वह व्यक्ति सारे जीवन भर अपमानित जीवन जिएगा। सत्राजित की यही दशा हुई, क्योंकि उसने भगवान को भगवान की अपकीर्ति की है कि नहीं है ना। परंतु जो भक्तगण भगवान की कीर्ति करते, इसलिए तो हम कहते संकीर्तन, कीर्तन करना मतलब भगवान के कीर्ति का गायन करना। जो भी कोई भगवान की कीर्ति का नित्य गायन करते हैं उनकी तीनों लोगों में कीर्ति होती। उदाहरण है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज से लेके तो अभी तक के पूरे वर्तमान आचार्य प्रभुपाद महाराज, प्रभुपाद महाराज ने क्या किया जीवन भर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरे जीवन भर सारे संसार को हरि नाम दिया और भगवान की इस नाम का गुणगान किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, तो भगवान प्रभुपाद जी की कितनी कीर्ति हो गई। और जो व्यक्ति जो जीवात्मा प्रभुपाद जी के इस रास्ते पे चलता है उस जीवात्मा को प्रभुपाद जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त है और वो भगवान का गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान, भगवान का कीर्तन करते रहता है, उसकी भी सारे तीनों जगत में कीर्ति होगी, है कि नहीं। कोई भक्त यदि रोज सब्जी मंडी में जाता है और सब्जी लेता है, दो चार बार यदि सब्जी वाले देख लेते कि ये तिलक कंठी पहनने वाला है, ये भक्त है, बिना बोले चौथे दिन आपको हरे कृष्ण बोलेगा बड़े प्रेम से। कोई भी व्यक्ति रिक्शा हो, सब्जी मंडी हो, कोई मार्केट हो, कोई भी, क्योंकि इतनी कीर्ति प्रभुपाद जी ने इस भगवान की है और भगवान के नाम की सारे संसार में प्रस्थापित की है कि कोई भी यदि वह नाम लेता है तो तुरंत उसका प्रभाव सारे संसार में पड़ता है। तुरंत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हमारी कीर्ति प्रस्थापित करने के प्रयास में कोई भी भौतिक कार्य में लिप्त नहीं रहना चाहिए कि पूरी तरह से बस इसी भौतिक कार्य में लिप्त रहेंगे तो ही हमारी कीर्ति होगी। नहीं, वो होगी लेकिन फिर ढलान, फिर ढलते जाएगी, कम होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। परंतु यदि हम भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो जो कीर्ति प्राप्त होगी वो अव्यय, वो कभी नष्ट नहीं। तो इसलिए कितने तो बेनिफिट है, कितने तो लाभ है, हरि नाम से कितने लाभ है, अमाप लाभ, असंख्य लाभ है। तो इस प्रकार से हम हरि नाम का लाभ लेना चाहिए, हरि नाम की कीर्ति सारे संसार को बतानी चाहिए, हरि नाम भगवान के लीलाओं का गुणगान सारे संसार में गाना चाहिए, तो सारे संसार के सारे जीवों की कीर्ति होगी, सारे जीव यशस्वी हो जाएंगे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का जो भी कोई उद्देश्य था वो पूर्ण हो जाएगा। तो जो भगवान की अपकीर्ति फैलाता है उसकी कीर्ति लेकिन 100% नष्ट हो जाती है, जो भगवान की कीर्ति फैलाता है वो भगवान को प्रिय भी हो जाता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जनाः परिपास्ते तेषां, भगवान कह रहे हैं जो नित्य चिंतन करते हैं वो महान है, लोग बड़े महान है, और जो अपकीर्ति करते हैं उससे उनका जीवन ध्वस्त हो जाता है। तो हमारे जीवन में हमने नित्य देखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि कभी भी हमारी इस जीवा से भगवान की अपकीर्ति ना निकले। जब भी हमारी जीवा कुछ कहने का प्रयास करे उसमें कभी ना कभी एकाध तो बार भगवान का नाम निकले दिन भर में, कम से कम इतना कीर्ति करे, भगवान की कीर्ति का गायन करे। दूसरा श्लोक संख्या 2.35 भयादनादुपरंतम मस्यन्ते त्वा महारथा येषां चत्व बहुमतो भूत्वा यास्य शीलाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, पांचवे दोष का वर्णन किया। अभी तक चार दोष हो गए, अभी अर्जुन के पांचवे दोष, युद्ध नहीं करने से अर्जुन में जो पांचवा दोष आने वाला है उस पांचवे दोष का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। वो पांचवा दोष क्या है? महारथी गण समझेंगे तुम भयभीत हो, भयभीत हो जाना युद्ध नहीं करने से, लोग सोचते कि तुम कायर हो इसलिए तो युद्ध नहीं कर रहे, यदि शक्तिमान हो तो युद्ध करते, आवाहन का स्वीकार करते युद्ध के, परंतु तुम आवाहन को स्वीकार नहीं कर रहे हो इसलिए तुम भयभीत हो, युद्ध नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का युद्ध नहीं, यदि नहीं करोगे तो यह तुम्हारा पांचवा दोष हो जाएगा। दोष की लाइन लगी हुई है एक के पीछे, युद्ध नहीं करने से अनेक दोषों को अर्जुन प्राप्त कर रहे हैं। महारथी गण समझेंगे कि भय के कारण तुम भय से उपरत हो रहे हो। भयात रणात उपरतम, रण में मतलब युद्ध भूमि में भय के कारण उपरत हो रहे, विमुख हो रहे हो। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं, महारथियों के बारे में अर्जुन को यहां कहा है ना कि जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे, मतलब सारे महारथियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। जो जो योद्धा तुम्हारे बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात सोचते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अर्जुन भय के मारे, भय के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं। अब हम वास्तव में यहां देखते हैं अर्जुन को महारथियों के प्रति बहुत आदर है, उनका बहुत आदर करता है, बहुत आदर है। कौन है महारथी? भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये जो महारथी है उनके प्रति बहुत आदर है, उनका उनकी बड़ी प्रशंसा अर्जुन करते रहते हैं, उनके द्वारा प्रेरित है, उनको प्रेरणा मिलती है इन महारथियों के द्वारा। लेकिन भगवान कह रहे कि वो महारथी क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि अर्जुन भयभीत हो गया है, डरपोक है, कायर है। तो अब हम यहां देखते हैं भगवान कृष्ण यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सी, कि अर्जुन महारथियों के बारे में बहुत प्रभावित है, उनका बहुत आदर करता है। अब इन महारथियों के सामने जो अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, अर्जुन जिनका बहुत आदर करते हैं, इन महारथियों के नजर में अर्जुन अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? अपने आप को, जो लोग इनका बहुत आदर करते हैं, ये जिनका बहुत आदर करते हैं, जो लोग इनसे प्रभावित है और ये जिनसे प्रभावित है, वो लोगों के सामने अर्जुन अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहेंगे। ये बात भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे कि वो लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? हम सांसारिक जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मेरा बहुत ही आदर करता है, बहुत मेरा आदर करता है, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं, और यदि मेरे से कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आप लोग हमको क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे, अरे आप सुनिए, वो जो जिनका आप आदर करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा काम आप करोगे तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाऊंगा, अरे हाँ, वो जो मेरा आदर करते हैं या मैं उनका आदर करता हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं यदि इस प्रकार से कर्म करूंगा तो। भगवान बहुत चतुर है, वो समझ गए अर्जुन के भाव को कि इसको अब यह बोलने के अलावा कोई इलाज नहीं है, तो वो बोल दिए कि जिनका तुम तुम्हारा जहां इतना आदर होता है वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, जरा सोचो तो सही। और अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है, अपने आप को नीचे दिखाना नहीं चाहेंगे, तो अर्जुन भगवान ने और एक बात अर्जुन को उकसाने के लिए कही, क्योंकि ये साधारणता हमारे सभी लोगों का, हम सारे साधारण जीवों का स्वभाव है, सभी का, मेरा आपका सभी का, क्या स्वभाव है, हम हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं मतलब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं कोई ना कोई ऐसे इस प्रकार का भ्रम कहीं कह सकते हैं उसको, या मन मन के आवेग, मनोवेग जिसको कहते हैं, मनो के वेगों में रहते, मन के वेगों में रहते सभी। अब यहां अर्जुन को डर है कि वो लोग क्या सोचेंगे, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मतलब मैं नीचे गिर जाऊंगा। और युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन कह रहा है, मुझे दिखाओ तो सही कौन मेरे साथ युद्ध करता है। तो दोनों सिचुएशन में देखिए मन की अवस्था क्या है। उस समय उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मन है, उनको उच्च स्तर पे अपना मन लग रहा है, यहां पे उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, न्यूनगंड, अपने आप को निचले स्तर। व्यक्ति हमेशा, यह मन की इतनी भयंकर दशा विचित्र है कि हमेशा ऊंचे और नीचे मनोवृत्ति के जंजाल में हम फंसे रहते हैं, या तो ऊंचे मनोवृत्ति में रहेंगे या निचले मनोवृत्ति में रहेंगे। ये जंजाल है, ये बड़ा भयानक जंजाल है, इसमें सारे हमारे जीव हम जैसे फंसे हुए हैं। अर्जुन की भी वही दशा है। तो इसमें जो निचला मतलब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियर मनोवृत्ति, इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप समझ लीजिए, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को, तो जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। और विशेष बात यह है कि यह बीमारी, यह विकार 100% लोगों को, मतलब जो साधु संत है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर हम तुमको सभी को यह बीमारी, यह विकार सभी को है। कौन सा? इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। बहुत भयंकर विचार है, दूसरे लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं इस बात से हम 24/7 चिंतित रहते हैं हमेशा, दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, नित्य चिंता रहती है इस बात की, नहीं रहती है वो दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ये 100 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे या क्या सोचेंगे। नित्य हमारा ये विकार है और हमारी चिंता जो है हमारे प्रति दूसरों के मतों के विषय में ज्यादा होती है, ना कि वास्तविकता के ऊपर आधारित। हमारे प्रति जो हमारी चिंता है, मेरे प्रति जो मेरी चिंता है, वो चिंता दूसरों के मतों पे आधारित है, ना कि वास्तविकता पे आधारित है। दूसरा मेरे बारे में क्या मत प्रदर्शित करता है उस विषय पे मेरी बहुत ज्यादा चिंता है, ना कि वास्तविकता मैं कैसा हूं। वस्तुतः रियलिटी में, सत्य परिस्थिति में मैं कैसा हूं, मेरे से कुछ गलतियां हो रही है क्या, उस बात से मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन दूसरा मेरे बारे में क्या मत प्रदर्शन करता है, क्या बोलता है, क्या उसका ओपिनियन है मेरे बारे में, ओपिनियन पोल, उससे सारा संसार चिंतित है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, वास्तविकता कुछ भी रहे है कि नहीं। पहले केस में दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसकी बहुत ज्यादा चिंता है, वास्तविकता कुछ भी रहे। दूसरे क्षण हमारे बारे में लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ भी रहे। वास्तविकता हो सकता है वैसे ना हो, लेकिन वास्तविकता के प्रति हम उदासीन। दोनों केस में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है तो भी हम वास्तविकता को जानना नहीं चाहते, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है तो भी वास्तविकता को नहीं समझना चाहते। इन टोटैलिटी हम कभी भी वास्तविकता को समझना नहीं चाहते। अर्जुन की यह दशा है, वो इतने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, अर्जुन इतनी बातें कह रहे हैं, कभी इंफीरियर कभी सुपीरियर, और दोनों ही स्थिति में वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, वास्तविकता के ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं हो रहा है। लघुता, लघुता, हाँ, इस प्रकार से लघु मनोवृत्ति समझे, लघुता, मीन माइंडेड ऐसा समझ सकते। तो जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स सुपीरियर से भी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य अपनी वास्तविकता को कभी भी नहीं समझता है, कभी भी नहीं। इल्यूजन भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है जो वास्तव में है ही नहीं, उसको इल्यूजन कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है वो इसलिए होता है कि हम अपने बारे में हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं, पर रियलिटी वैसा नहीं होता है। चार लोग उस अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करते ऐसा हमको लगता है, इसलिए हमको डर है कि ये बुराई हमारा करेगा, इनका मत जो होगा हमारे विपरीत होगा, हमेशा ऐसे लगता है, इसलिए चिंता होती है। जो भक्त होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चिंता नहीं करते कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। भक्त भ्रमित नहीं होते क्योंकि उनको रियलिटी पता है, कृष्णा इज भगवान, मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, आई एम हिज सर्वेंट, थ्री रियलिटी भक्त को अच्छी तरह से पता है। क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं उनको ये रियलिटीज पता नहीं होती है, इसलिए इंफीरियर और सुपीरियर ये उनके पीछे लगा रहता है, इस जंजाल में वो फंसा रहता है, कभी उनको बहुत ऊंचा लगता है तो कभी बहुत नीचा लगता है, या नहीं लगता है तो कोई लोग नीचा समझेंगे, इसका डर लगता है। इतने सालों से, कई सालों से वैदिक पद्धति से हमारे भारतीय समाज में विवाह बंधन होते हैं, लेकिन जहां तक हमने देखा है, ज्यादा से ज्यादा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा विवाहों में, विवाह के समय विवाहों में अभी भी मुझे मान नहीं दिया, मुझे चाय नहीं पूछा, मुझे नाश्ते के लिए नहीं बोला, मेरा अपमान कर दिया, इसलिए बड़े बड़े हंगामे हो जाते हैं, मेरी कीमत नहीं, नहीं होता ऐसे। पानी भी नहीं पूछा, हरे कृष्ण भी नहीं किया, बाकी तो छोड़ दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स है प्रभु जी, जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं निकलेगा, बड़े बड़े भव्य समारोह होंगे हमारे समाज में, और उस समारोह में होगा क्या, तू तू मैं मैं। वैदिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है ये समारोह करके, कि सारा समाज एकत्रित आके एक दूसरे का प्रेम पूर्वक स्वागत करेंगे, मिलाप होगा, चर्चा होगी अच्छी प्रेम पूर्वक। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, न्यून गंड है, लघुता है, नीचे दिखाना और ऊपर देखना यही बात है, इसलिए समाज में भगवान अर्जुन को इस बात के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन को यहां बोल रहे हैं कि वो लोग क्या कहेंगे वहां, क्योंकि भगवान समझ रहे कि जब ने पहले ही बताया आत्मा के स्तर से कर्तव्य के स्तर पे भगवान बता रहे हैं, कर्तव्य के स्तर से अभी और नीचे आ गए, वो भौतिक सांसारिक बातें बोल रहे हैं, भगवान सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं, और अर्जुन को सांसारिक बात का जब भगवान को पता हो गया कि अर्जुन अब इस बात को ही ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब वो तो स्तर और नीचे आया है उनके समझने का, इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए वो अब ये बोल रहे हैं कि वो महारथी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तो कभी भी दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते इस बात से, हम हमेशा ज्यादा अलर्ट रहते वास्तविकता। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस जो है, कॉम्प्लेक्स जो गंड है, इससे बाहर जब तक हम इसके बाहर नहीं आते तब तक हमारे अंदर लघुता ही रहे, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं तो भी अशुद्धता है, कहीं तो भी अशुद्धता है। क्या अशुद्धता है? है कि नहीं है? हम बोलते हैं कि हृदय शुद्ध होता है, मैं बोलता हूं कि हृदय में बहुत ज्यादा अशुद्धता है, पूरी तरह से पोल्यूट हो गया है, काला पड़ गया है अंदर से। रीजन ये है, इसी के कारण हमारे अंदर द्वेष भाव ईर्ष्या ये सब आ गया है, और कभी कभी इस प्रकार से न्यूनगंडता लघुता आ जाती है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बार बार प्रत्येक श्लोक में हमारा कंसर्न रख के कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध कर दो, शुद्धता के स्तर पे आ जाओ, सारे कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाओ, कोई कॉम्प्लेक्स में मत रहो, खुले आसमान में रहो। अब देखिए हमारे भौतिक संसार की दशा ही तो हो गई कि जिस जगह पे हम रहते हैं उसी को नाम कर दिया है कॉम्प्लेक्स। तो मतलब है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी यात्राओं में जाना चाहिए, साल में दो चार पांच दस बार, और यात्राओं में जब हम जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सों में नहीं रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का तरीका पता चल जाएगा। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे क्या लेना देना है, भगवान मेरे बारे में क्या सोचते, भक्त मेरे बारे में क्या सोचते, ये महत्व की बात है। तो दूसरा यहां पे बात यही हो रही है ना, भगवान को बोलना पड़ रहा है कि भैया अर्जुन, अरे वो महारथी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे। वास्तव में यहां तो इतनी सिंपल बात होनी चाहिए थी कि अरे अर्जुन भगवान के बारे में कुछ तो सोच। वो क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम यही तो है। इतना कॉम्प्लेक्स अर्जुन को हो इसलिए रहा है कि जिनके बारे में प्रथम सोचना चाहिए था अभी तक अर्जुन नहीं सोच रहा है, सरेंडर होने के बाद भी थोड़े बहुत कहीं तो भी कॉम्प्लेक्स है। वो सोच रहे फलाने ढिकाने क्या बोलेंगे, वो कुछ भी बोले, जब भगवान क्या बोलेंगे हमारे बारे में, इस बात का हमारे अंदर प्रकाश पड़ेगा तब जाके अनर्थ दूर हो जाएगा। तो इसलिए बाकी दूसरों के मतों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, हमको क्या कहेगा, इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम सही स्वच्छ शुद्ध मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान के साथ अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये संसार हमको नित्य डराते रहेगा, ये सांसारिक लोग हमको रोज डराते रहेंगे। आज भी बहुत बड़ा डराया उन लोगों ने, खतरनाक डराया। आज पहले तो बोले सुबह सुबह सारा संसार खत्म हो जाएगा, आप नींद में से उठेंगे तो विध्वंस सब खत्म हो जाएगा। बोले अभी सुबह सुबह हुआ नहीं, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो नीचे कॉम्प्लेक्स में एक मिले, प्रभु जी हरे कृष्णा, हम लोग हरे कृष्णा, प्रभु जी आप है ना, हमने हाँ है, आप हरे कृष्ण वाले भाई आप कुछ कर सकते हैं, वो ऐसे सोचते हैं लोग। क्योंकि रात को 11:11 पे सब खत्म होने वाला है, आप हमारे आजू बाजू में है ना। मतलब देखिए यह पता है कि भगवान का नाम लेने से रक्षण होता है, संरक्षण होता है, लेकिन वो कब याद आता है, लास्ट मोमेंट जब सब खत्म हो जाता है, कोई होप्स नहीं रहती, तब भगवान का स्मरण कैसे तैसे वो भी सामने हम दिखे। इसलिए तो इस सांसारिक जगत हमको नित्य डराते रहे, नित्य हमको जो चाहिए वैसा नहीं कहेगा, हमारे बारे में विपरीत विचार ही रखेगा, है कि नहीं, हम सबको अनुभव है। तो अपेक्षा क्यों करें सांसारिक जगत की कि हमको सब अच्छे बोले, क्यों बोले, नहीं बोलेंगे, हमको विचलित नहीं होना है। कोई कुछ भी बोले, हमको पता है चार नियमों का हम पालन कर रहे हैं, हमको पता है हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, हमको पता है हम भगवान का नाम का स्मरण करके चिंतन भी कर रहे हैं, हमको पता है हम सेवा भी कर रहे हैं, हमको पता है हम भगवान के आदेश और संदेश और उपदेशों का वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रत्येक जीवों के पास जाके उनको समझा रहे इसको पढ़ो, लो इसको, महीना भर यही काम करते रहते, हमको पता है। जब हमको इतना सब पता है तो फिर विचलित होने की आवश्यकता क्या है? किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स में रहने की क्या आवश्यकता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स में रहने की हमको आवश्यकता नहीं। यही तो भक्ति मार्ग की विशेषता है कि भक्ति हमको क्या देती है, निर्भय बनो, निडर बनो। भक्ति से व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसको भय नहीं रहता है। तो यहां इस श्लोक में उपरत यह शब्द आया है। उपरत शब्द का अर्थ क्या है? रूपा जी बताते, विमुख, विमुख होना। तो उपरत मतलब युद्ध से विमुख, अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं। अर्जुन क्या सोचते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वो हट जाना चाहते हैं। क्यों हट जाना चाहते हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? सब लोग मारे जाएंगे, नर्क हो जाएगा, पाप होगा। वो नहीं होगा, पुत्र को पिंडदान नहीं होगा, स्त्री धर्म कुल धर्म नाश होगा, विचार होगा। इन सारे बातों का उत्तर मिल गया है, मिल गया है ना? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमको पहले अभी तक के श्लोक में मिल गया है। भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को दे दिए। तो अभी युद्ध करना चाहिए। अभी भी अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं कुछ कुछ बातें? अभी भी अर्जुन हट क्यों रहे? यहां कहा है ऊपर रहता मतलब हटा हुआ। अर्जुन युद्ध से हट जाएंगे तो अभी भी अर्जुन के मन में नहीं कुछ तो 5% तो विचार है हट जाने का। क्यों है? उपरत, उपरत ही आगे कहते हैं। क्यों, क्यों अर्जुन हट जाएंगे, उपरत हो गए, विमुख हो जाएंगे युद्ध से? अभी तक भी इतना अर्जुन, भगवान ने इतना कुछ कहा है, फिर भी अर्जुन के मन में थोड़ा बहुत। क्योंकि श्रद्धा की कमी। देखिए हम पहले दिन से बता रहे हैं, सारे भक्ति मार्ग की जो शुरुआत है, या प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति, या भगवान का प्रेम प्राप्त करने की जो सबसे पहली, सबसे मूल बात है, जिस पे भक्ति, प्रेम, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद सब कुछ निर्भर है, वो क्या है? अनन्य श्रद्धा, पूरी तरह से भगवान पे श्रद्धा, कि भगवान का जो उपदेश है वो सही है, यह मानकर तर्क करें। आजकल संसार में हम देखते हैं भगवत गीता पे तर्क होता है। कैसे तर्क होता है पता है? भगवान ने जो बात कही है, भगवान कहे हैं सततम कीर्तयन्तु माम यततंश्च दृढव्रता नमस्ते, मतलब जो सतत मेरा कीर्तन करता है वो दृढ़ होते हैं, वो महान होते हैं। भगवान ने यह बात कही, इस बात को सत्य मान के उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, भगवान ने यह बात कही उसी के ऊपर डिबेट शुरू हो जाता है और कहते हैं फलाने ढिकाने फाइव स्टार होटल में भगवत गीता के ऊपर चर्चा, डिस्कोर्स ऑन भगवत गीता 5 to 10 XYZ फाइव स्टार होटल, आप यू आर इनवाइटेड, फीस 25,000 रुपए, एंड पीपल गोज देयर, लोग जाते हैं और पूरा 10-5 घंटा वहां बैठते हैं और चर्चा क्या करते हैं? वो जो भगवान ने कहा है क्या वो सत्य है, इस बात पे चर्चा करो। कितना कितना बड़ा भ्रम है, कितना बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो भूल रहे एक बात को, कौन से? भगवान कहते हैं मैं समय हूं। व्यर्थ की बात करोगे, इस टंग का मिसयूज करोगे तो जीवन भर तंग रहोगे। इस टंग का मिसयूज मत करो तो जीवन भर तंग रहना पड़ेगा। यदि टंग का मिसयूज करोगे इस प्रकार के सेमिनारों में जाके, और भगवान की उपदेश, भगवान ने जो कहा उसकी सत्यता के आधारित चर्चा और वितर्क तर्क वितर्क करते रहोगे तो समय को बर्बाद कर रहे हो। समय भगवान कह रहे कि मैं ही वो समय हूं, मेरे ही बातों को झुटला रहे हो, वो समय मैं ही हूं, समय तुम्हारा तुम वेस्ट कर रहे हो, जरा ध्यान रखो क्या होने वाला है। तो इस प्रकार का वास्तव में ये कोई डिबेट नहीं है, इसको तो हम कहते कि मूर्खता है, मूर्ख लोगों की सभा है, बाकी कुछ नहीं। मूर्ख लोगों की सभा में किसने नहीं जाना चाहिए? विद्वानों ने नहीं जाना चाहिए। जो विद्वान है वो इस सभा में नहीं जाते हैं, जो मूर्ख है वो ऐसे ही सभा में जाते हैं। सारे संसार में इस प्रकार का प्रचार होता है, बड़े बड़े डिस्कोर्सेस होते हैं, लोग बैठते हैं, बड़ा बड़ा उसको यज्ञ कहा जाता है, भगवत गीता यज्ञ। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में नहीं थे, आत्मा ही भगवान है, मन अर्जुन है, हो गया खत्म काम, फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश। और भगवत गीता में लिखा है श्री भगवान वाच। अब इसलिए ये जो सब कुछ है विचलित करने वाला है, अतिशय भयंकर है। इस सांसारिक बातों में नहीं आके भगवान के उपदेशों में पूरी श्रद्धा चाहिए, 100%। डोंट टेल मी कि मेरी श्रद्धा 99.99.9 है, नहीं, 100%। अर्जुन उदाहरण है, 0.00000001, इतनी श्रद्धा कम है अर्जुन की, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहां इस स्थिति में। हमारी कितनी है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के उपदेश समझना और उसका एप्लीकेशन, उसको अपने जीवन में उतारना, इसके लिए एक पात्रता चाहिए, वो है श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो भगवद गीता नहीं समझेगी, भगवद गीता नहीं समझेगी तो फिर जीवन में उतारेंगे क्या? और जीवन में यदि नहीं उतारेंगे तो जीवन में पवित्रता कहां से रहेगी? और जीवन में पवित्रता नहीं रहेगी तो हरिनाम कैसे पवित्र ले सकेगी? पवित्र हरिनाम पवित्रता से कैसे ले सकेगी, शुद्धता से ले पाए? तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। तो यहां पे कह रहे अर्जुन युद्ध से हट जाएंगे, अर्जुन चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा अर्थ उपरत का है कि उत्साह रहित, मतलब उत्साह से विमुख, मतलब युद्ध तो करेंगे, कोई उत्साह ही नहीं है। जीवन में हम अनेक कार्य ऐसे करते हैं, कार्य तो करते हैं तो उत्साह नहीं। अरे क्या करें प्रभु जी, 16 माला करना पड़ता है, करते हैं, नहीं थोड़ी बोल रहे हैं, उत्साह, उत्साह की कमी है। उत्साह इसलिए, उत्साह ये जो है, ये उत्साह दैवी गुण है, दिव्य गुण है, देवताओं का गुण है ये। राक्षसी प्रवृत्ति में उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि उत्साह जो है दिव्य गुण है। तो उत्साह रहित रहना अपने कर्म करते वक्त, यदि कोई व्यक्ति कर्म करते वक्त उत्साह रहित है तो उसको यश प्राप्त नहीं होगा। और उत्साह केवल और केवल भगवान की कृपा से मिलता है, अदरवाइज आवेग होता है। देखिए ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइए, आवेग और उत्साह में बहुत फर्क है। 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, हा 10 फुट ऊंचा जंप करेंगे, सारे संसार को डंका पीट के बोलेंगे, अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, ये उत्साह नहीं है, यह आवेग है। क्यों यह आवेग है? क्योंकि यह आपको भगवान से या भक्ति से या आत्मज्ञान से, अपने आप के स्वयं के आत्मा के ज्ञान से दूर ले जाएगा। ये दूर ले जाने का काम कर रहा है, यह आवेग है। उत्साह क्या है? जो हृदय से प्रेरणा मिलती है और एकदम तन मन धन उत्साहित हो जाता है, और हृदय से जो शुद्ध अंतकरण से जो प्रेरणा मिलती है वो भगवान की कृपा से मिलती है। इसलिए जीवन को उत्साहित करना चाहते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं देखिए, नहीं, यहां इस समय अर्जुन उत्साह रहित है, युद्ध के लिए उत्साहित नहीं हो रहे, भगवान कृपा देना चाह रहे, लेकिन अभी तक अर्जुन ले नहीं रहे। यदि वो तुरंत कृपा ले ले भगवान से, प्राप्त कर ले, तो क्या हो जाएगा? तुरंत उत्साहित हो जाएगा और बाण चलाना शुरू कर देगा अर्जुन। पर यहां इसलिए भगवान शब्द लिख रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान, उपरत, क्या कहते हैं भगवान? उपरत मतलब विमुख। पहले तो ये युद्ध से उपरत हो रहा है, युद्ध से हट रहा है, दूसरी बात उत्साह रहित भी है। जो दैवी क्वालिटी जो मैं देता हूं, भगवान कह रहे हैं यदि युद्ध नहीं करेगा और करेगा और उत्साह रहित होकर करेगा तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करते वक्त उत्साहित होना चाहिए, उत्साहित होकर कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कैसे उत्साहित होकर कर्म करते वक्त? पीछे से बोलिए, उत्साहित कैसे हो? कर्म करते वक्त उत्साहित रहना चाहिए। सारा संसार हजार बार ये बात सुनी है, पहली बार सुन रहे ऐसी नहीं, कई बार सैकड़ों बार इस बात को सुना है कि उत्साहित होके काम करो कर्म, लेकिन होता क्यों नहीं है? और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा को आत्मसात करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी। कैसे? हाँ, भगवान की सेवा मिला तो भगवान की कृपा समझ के सेवा को सेवा करना चाहिए, लेकिन फिर भी उत्साहित कैसे होंगे? हमने कहा है उत्साहित होंगे कर्म करते वक्त उत्साहित रहना चाहिए। उसकी तो कोई सुपर कैप्सूल टैबलेट मिलती नहीं है, टैबलेट खा लिए उत्साहित हो गए, नहीं, परमानेंट उत्साह नहीं है किसी में। चाय पी लेंगे, शरबत पी लेंगे, दो मिनट के लिए फ्रेश रहेगा, लेकिन उत्साह नहीं रहेगा। हरि नाम, कर्म उत्साहित होके करना है और उत्साह देने वाले भगवान हैं, तो कर्म करने के पहले क्या करना पड़ेगा? कितना सिंपल बात, हरि नाम लेना पड़ेगा। कैसे? श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक हरि नाम लेने से काम में, कर्म में उत्साह आ सकता है। इसलिए सारे शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे पहले उठ के पहला काम, फर्स्ट ड्यूटी क्या है? भगवान के नाम का स्मरण सबसे पहले कीजिए। तो बाकी दिन भर आपको राजसिक वातावरण में रहना है, फिर तामसिक वातावरण में रहना है, इन वातावरणों में आपको दिनचर्या, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपके कर्तव्य कर्म है, उसको पूर्ण करना है ऐसे वातावरण में। कैसे? राजसिक और तामसिक, ऐसे वातावरण में आपको कर्तव्य कर्म करना है। इस वातावरण में आपको उत्साह बनाए रखना है, और उत्साह इस वातावरण में बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक हरिनाम लेना होगा। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, सुबह उठते थे बोलते हैं आपको ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, सब कुछ पहले करना है, और जब एकदम लास्ट करना है हरि नाम, भगवान का नाम हमको एकदम आखिरी में सोने के पहले। तो तो दिन भर इस प्रकार के हम कर्म करते रहते करते रहते करते रहते उत्साह मिलता नहीं है, शक्ति क्षीण होते जाती और एक समय आता है कि हम बहुत ही जल्दी जीवन में बहुत ही जल्दी उत्साह रहित हो जाते हैं, चेहरे पे कोई चमक नहीं दिखती, सारा फ्रस्ट्रेशन दिखता है, सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। क्यों? कारण यह है जो सबसे प्रथम करना चाहिए वो सबसे लास्ट करना। क्यों ना चार माला सुबह उठ के पहले करें, जो 16 माला दिन भर करते हैं उन्हें दिन भर न करते हुए पहले सुबह उठते से चार माला कर लेंगे, जो 8 माला करते हैं वो सुबह उठते से ही 2 माला करें पहले, सारे काम छोड़ के चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट काम। जो 4 माला करते हैं वो 1 माला सुबह उठते से करें, और इससे नीचे जो माला जप करते हैं उन्होंने कम से कम 4 माला जप करना ही चाहिए, इससे कम जप एक्सेप्टेड ही नहीं है, 4 से कम तो नॉट एक्सेप्टेड, उनको कंसिडरेशन में ही नहीं है। तो जप करना चाहिए, जप जो भी आपका संकल्पित जप है, आपके कर्म जो भी है जैसे भी है, वो व्यक्ति को सबसे बेस्ट व्यक्ति कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है जो सुबह सुबह पहले 16 माला जप पूरा कर देता है, प्रथम दर्जा का व्यक्ति। द्वितीय दर्जा जो थोड़े बहुत माला सुबह सुबह करता है, तृतीय दर्जा का व्यक्ति जो माला ही नहीं करता है उसको वो तृतीय दर्जा मतलब कोई 9 दर्जा। तो माला जप करना चाहिए तभी उत्साह मिलेगा, शक्ति मिलेगी, कर्म करने का साहस शक्ति उत्साह सब कुछ प्राप्त। तीसरा उपरत का अर्थ है निष्क्रिय, युद्ध में रहते हुए भी निष्क्रिय रहना। यदि अर्जुन युद्ध में रहते हुए भी निष्क्रिय रहेंगे, ये अर्जुन पहले पहले अध्याय में कहा है अर्जुन ने, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा मतलब जंगल में चुपचाप से भाग जाऊंगा, ऐसे नहीं कहा। अर्जुन कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्रास्त्र रख दूंगा, उनको कहूंगा तुम बाण चलाओ मेरे पर, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, मैं निष्क्रिय रहूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर बाण चलाने वाले तातश्री है भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का और तुम्हारा आमने सामने युद्ध हो रहा है, और भीष्म पितामह के सामने तुम सारे शस्त्र रख दोगे तो तुमको लगता है क्या भीष्म पितामह तुम्हारे ऊपर बाण चलाएंगे? और भीष्म पितामह इसलिए तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, वो सोचेंगे अरे ये अर्जुन शायद मेरे सामने भयभीत हो गया, द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु महाराज वो सोचेंगे ये कैसा क्षत्रिय, मैंने कैसा इसको ट्रेनिंग दिया है, अरे 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 मेरी शिक्षा में कमी रह गई, कितना लांछनस्पद है, कितना बुरा है, वो सोचेंगे भयभीत हो रहा है मेरे सामने, डर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा। तो यदि तुम निष्क्रिय भी रहने का प्रयास करोगे, युद्ध भी नहीं करोगे, शस्त्र रख दोगे, तो भी इसमें कोई महानता नहीं है कि वो लोग तुमको बाण चला के मार देंगे और तुमको क्षत्रिय का मृत्यु आएगा रणांगण में, ऐसा नहीं होगा। उल्टा होगा ये कि वो लोगों को भी अपने आप पे जो तुम्हारे ऊपर गर्व है वो उनका सब हरण हो जाएगा और वो बड़ा पश्चाताप करेंगे कि इसको हमने ट्रेनिंग दिया ये तो एकदम कायर है। भगवान इस प्रकार से अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे लोग देखो तुमको क्या कहेंगे। ये भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन अपने ही बारे में वास्तविकता नहीं जानता, उन्हीं लोगों को कंसर्न होता है जो दूसरे क्या बोलते हैं उस बात पे, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं अभी कहा हूं कि भगवान यह बात इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन अपने ही बारे में अपनी वास्तविकता नहीं जानते। अर्जुन की वास्तविकता क्या है? अर्जुन की वास्तविकता यह है कि अर्जुन से अर्जुन युद्ध में कभी भी भयभीत नहीं हुआ, यह वास्तविकता है। जब भीष्मक का पुत्र युद्ध के पहले युद्ध की बड़ी भारी तैयारी चल रही थी, जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। जब भीष्मक राजा का पुत्र बहुत भारी एक अक्षौणी सेना लेके आया अर्जुन के पास, अर्जुन के पास उस समय भगवान कृष्ण खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज थे। और जब ये कृष्ण के पास आए भीष्मक पुत्र, वो अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, तुम जरा भी भयभीत मत होना, जरा भी डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा, बस तुम चिंता मत करना, तुम जरा भी भयभीत मत होना। कौन बोल रहा है? भीष्मक राजा का पुत्र अर्जुन को बोल रहा है। वहां कृष्ण खड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज ये बोल रहा है कि अर्जुन तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी जरूरत पड़े मुझे बस इशारा कर देना, ऐसे बाण चलाऊंगा कि सारे शत्रुओं को ध्वस्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो अर्जुन इस बात पे इसको, इस राजकुमार को कहे, मैं कुरु कौरव का वंशज हूं, कुरु वंश में जन्मा हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है, मैं पांडु का पुत्र तथा द्रोण का शिष्य हूं, और इन सब बातों के उपरांत मेरे पास मेरा धनुष है। ये अर्जुन का स्वभाव है, वास्तविकता। वो एक कह रहा है, वो जानता है, सबसे पहले वो कहता है कि मेरे पास श्री कृष्ण है। भय मेरे से कांपता है, कह रहा है, मैं भयभीत कैसे होगा, ये भय मेरे से कांपेगा, मेरे पास मेरा धनुष है, मेरे पास श्री कृष्ण है, मैं पांडु पुत्र और आचार्य द्रोण का शिष्य हूं, मैं कैसे भयभीत हो सकता हूं, मैं भय को भयभीत कर दूंगा, शत्रुओं को नाश कर दूंगा, मुझे भयभीत होने की कोई संभावना नहीं। यह अर्जुन की विशेषता, यह अर्जुन की वास्तविकता। लेकिन कॉम्प्लेक्स में रहने के कारण अर्जुन अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं, और दूसरे क्या कहेंगे और ये क्या कहेंगे और भ्रम आ गया, और इन सब बातों से बड़े विचलित होके दुखी। प्रभुपाद जी लंदन में एक प्रवचन करते वक्त इस श्लोक के ऊपर विशेषकर प्रवचन करते वक्त कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का शक्ति, इस प्रकार का आत्मविश्वास, उत्साह रहना रखना बहुत आवश्यक है। इस श्लोक के तात्पर्य में इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्यथा मरना बेहतर है, मर जाओ, मरो, सीधा प्रभुपाद जी तात्पर्य कह दिए। प्रभुपाद जी एक जगह लंदन में इसका इस श्लोक पे प्रवचन करते हुए एक बार कहे कि एक औरंगजेब के राज्य में उसका एक बहुत बड़ा सरदार था, उनका नाम था यशोमंत, बहुत पराक्रमी सरदार था, यशोमंत नाम का। युद्ध लड़ने के लिए एक बार बड़ा घमासान युद्ध होने लगा, हो रहा था, तो यशोमंत युद्ध लड़ने के लिए अपने पूरा फौज लेके पहुंच गया। अभी युद्ध की शुरुआत ही हुई थी, पहला ही दिन था, घमासान युद्ध हुआ, युद्ध जारी था, आधे बीच आधे दिन मध्यान्ह का समय था, और उस समय ये यशोमंत राजा अपने राजधानी, अपने राजमहल पे पहुंच गया, और वहां जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सुरक्षा रक्षक थे, उनको रानी, महारानी ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था, पक्का आदेश दिया था, किसी भी कीमत पे कोई भी आए प्रमुख द्वार
खोलना नहीं है।
अब राजा यशोमंत स्वयं आ गया सरदार, दूत जो सिक्योरिटी गार्ड है, रक्षक जो है, भागते भागते अंदर महारानी के पास गए। महारानी को कहे कि राजा आ गए हैं, दरवाजा खोले कि नहीं खोले। रानी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, युद्ध अभी मध्यान्ह पे दिन है, युद्ध जारी है, उधर युद्ध चल रहा है, राजा कैसे, सरदार कैसे आ सकते हैं, हो नहीं सकता, दरवाजा नहीं खोल रहा है। फिर रानी कहती कि यदि वो भी आ गए हैं तो एक क्षत्रिय को आधे अधूरे युद्ध में वापिस नहीं आना चाहिए, भलाई वो वहां पे मर जाए। और मैं जानती हूं कि ये राजा नहीं आए हैं, ये कोई राजा के रूप में कोई दूसरा ही छल करने के लिए आया है, क्योंकि राजा ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि उनको युद्ध में मैदान में युद्ध करना है, युद्ध में भलाई मृत्यु क्यों ना आ जाए। रूपा जी इस श्लोक के तात्पर्य में एक जगह प्रवचन में यह उदाहरण देते हैं, क्षत्रिय का युद्ध। तो अर्जुन को भी यही करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ये जानता है, वो पहले ही बोला है कि मेरे पास सारी शक्ति है, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास मेरा बाण मनुष्य है। अब क्योंकि भ्रम आ गया, भ्रमित हो गए हैं, थोड़ा बहुत अटैचमेंट्स बीच में आ रही है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, थोड़ा भ्रम आ गया। हमारे सभी के साथ ऐसे ही होता है, प्रवचन सुनते हैं, बहुत बढ़िया भगवद गीता का प्रवचन कहा है, प्रवचन में कहा गया है कि सुबह जल्दी पहले हरिनाम का जप करना है, जैसे ही घर पे गए बोले सुबह सुबह क्या जप करोगे, इतना काम पड़ा हुआ है, पहले काम करो फिर जप करो। फिर धीरे धीरे हम भ्रमित हो जाते हैं और सारा काम पहले करते हैं और जप बाद में करते हैं, क्यों, क्योंकि हम भी थोड़ी देर के लिए परिस्थिति को देख कर यहां से तो निकले नहीं, कल से सुबह ही जप करूंगा पहले, जैसे अर्जुन मेरे पास सब कुछ है, मैं फाइट करूंगा, युद्ध करूंगा, ऐसे है, मेरे पास है, मैं करूंगा, सुबह उठते से जप करूंगा, भगवद गीता में भगवान का आदेश है, करूंगा। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं परिस्थिति को देख के भ्रमित हो जाते हैं, परिस्थिति भ्रमित कर देती है। मैं कई बार बोला कि जितने बजे उठते हैं उसके केवल 10 मिनट पहले उठ के एक माला जप करो पहले, बस फिर बाकी सारे काम पर, वो 10 मिनट के लिए भी परिस्थिति भ्रमित करती है, कितना बड़ी भारी दशा है। हम सब के साथ ही होता है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसलिए कल सुबह सभी पहले जप करें, ये मेरी भगवान के चरण में प्रार्थना है कि भगवान सभी को उत्साहित करे उसके लिए, और ना कि कल से शुरुआत करें और जीवन भर पहले जप करें, बाद में बाकी के सारे कर्तव्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है, इसके ऊपर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रसाद आगे एक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या बोले, हाँ, और गुरु को कौरव, एक्चुअली उसके बहुत से कारण है। पहले तो जो राज गद्दी पे है उनके जो पुत्र है वो कौरव ही है, मतलब कौरव को कुरु कहते हैं वो ठीक बात है, पर पांडवों को पांडव इसलिए कहा जाता है कि उनकी गद्दी छीन ली, पहला कारण है कि उनकी गद्दी छीन ली है, कुरु वंश की जो गद्दी है राज गद्दी उससे उनको दूर कर दिया है। लेकिन वो कहना चाहते कि हम भी कुरु वंशज है क्योंकि पांडु के पुत्र है। यदि अर्जुन अर्जुन को अर्जुन कहे, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर कहे, भीम को भीम कहे, तो ये कौरव वंश के है पता नहीं चलेगा। अब ये कौरव वंश के है पता चलने के लिए इनको कहते हैं पांडव जो पांडु पुत्र है, पर इनको कुरु कौरव इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो अभी राजगद्दी पे जो है धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र के पुत्र क्योंकि वो उनके पुत्र है इसलिए कौरव कहा। पांडु के ये एक कारण है, वैसे तो बहुत से कारण अनेक जगह बताए गए हैं उसमें, और एक कारण ये बताया कि पांडव क्योंकि केवल पांडु राजा महाराजा पांडु के पुत्र है, इतना ही बात सफिशियंट नहीं है, क्योंकि अनेक देवताओं ने भी, जो 5 देवता है इन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिए, तो देवताओं का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मायने रखता है, देवताओं के आशीर्वाद से और शक्ति से इनका जन्म हुआ है, ऐसे ये पांडव है, पांच पांडव। तो इस प्रकार से अनेक विचार होता है। और कोई प्रश्न आज के कथा के ऊपर आधारित कुछ समझा नहीं हो या कुछ प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।